के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। पिछले कई दिनों से कुंती महारानी की इन प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा चल रही है और आज हम इस 30वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइएगा। जन्म कर्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः शिशुयादहसु तदत्यन्त विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यग्नि शिशुयादहसु तदत्यन्त विडम्बनम् श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात या विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कुंती महारानी वैसे तो श्री कृष्ण की माता तुल्य हैं। श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव की बहन हैं कुंती महारानी। लेकिन हालांकि माता यशोदा श्री कृष्ण के अस्तित्व को, उनके वास्तविक परम सत्य की अवस्था को नहीं पहचानती हैं, कुंती महारानी पहचान रही हैं। इसलिए हम जान सकते हैं कि यशोदा माता का स्तर कुंती महारानी से श्रेष्ठ है। अब यह पूछा जा सकता है कि जो भगवान को जानते हैं उनको हम श्रेष्ठ मानते हैं और जो नहीं जानते हैं भगवान को हम कहते हैं कि वो निम्न श्रेणी के लोग हैं। परंतु यहां तो कोई विपरीत ही बात कही जा रही है कि माता यशोदा ये नहीं जानती हैं कि कृष्ण भगवान है और कुंती महारानी जानती हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी कुंती महारानी को श्रेष्ठ, यशोदा माता जी को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों ऐसे? क्योंकि यशोदा माता का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा, इतना तीव्र है कि उस प्रेम की वजह से वो अपने पुत्र के अस्तित्व को पहचान नहीं सकती है, उनकी सही पहचान उनको नहीं हो रही है। इसलिए ये माता यशोदा की महिमा है। हालांकि कुंती महारानी का प्रेम भी बहुत तीव्र है, परंतु माता यशोदा जितना नहीं है, और इसलिए बार बार इन श्लोकों में कुंती महारानी कहती जा रही हैं कि आपकी जो लीलाएं हैं, आपके क्रियाकलाप हैं, ये बहुत ही विडंबना में डालने वाली हैं, सबको भ्रामक हैं, चकराने वाली हैं आपकी लीलाएं। पिछले श्लोक में कुंती महारानी कह चुकी हैं कि आपकी लीलाएं मोहक इसलिए हैं कि सबसे पहली बात तो वो बहुत मानवीय लगते हैं, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति आपको साधारण मनुष्य समझते हैं, मानव समझते हैं, क्योंकि आपके कार्य भी मानवीय लगते हैं। और दूसरी बात कि आपके कार्यों से ऐसे प्रतीत होता है कि आप पक्षपात करते हैं, लेकिन सत्य तो ऐसा नहीं है। तो ये भ्रम में डालने वाली बातें हैं। इसके बारे में कुंती महारानी पिछले श्लोक में चर्चा कर चुकी हैं। अब इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं और एक कारण बता रही हूं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी लीलाएं, आपके क्रियाकलाप सारे दुनिया को भ्रम में डालने वाली हैं। और वो क्या है कि आपकी लीलाओं में हमें विरोधाभास लगता है। किस प्रकार का विरोधाभास लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप तो अजन्मे हैं, आपका कोई जन्म नहीं है। वैसे आत्मा का जब जन्म नहीं है तो भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? जैसे आत्मा का कोई जन्म नहीं, वैसे भगवान भी अजन्मे हैं, इसलिए यहां पर उनको अजस्य कहा गया है। अजस्य मतलब जो अजय हैं उनके प्रति, उनका। तो अज, ज मतलब जन्म, तो अज जो होते हैं वो अजन्मे हैं। तो आप अज हैं लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं, आप अकर्तु हैं, आप कोई कार्य नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं। इसलिए ये तो बड़ा विरोधाभास है, अजन्मा जन्म लेता है, जो निष्क्रिय है वो कर्म करता है। उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान या परम सत्य कोई कार्य नहीं करते, उनका कोई जन्म नहीं होता, लेकिन अन्य शास्त्रों में बताया जाता है कि वो जन्म लेते हैं, वो कर्म करते हैं। तो इसलिए कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान के पास अनगिनत शक्तियां हैं। परा मतलब भगवान, परस्य मतलब भगवान के, अनंत शक्तियां हैं, और इन अनंत शक्तियों के माध्यम से वो अपनी हर इच्छा को सहज ही बिना कोई प्रयास किए हुए पूर्ण कर सकते हैं। ये हैं भगवान। हम तो प्रयास करते हैं, कई योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, और फिर भी कई बार हमारी योजनाएं सफल नहीं होती हैं। परंतु भगवान स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविक रूप से ही उनकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है उनकी शक्तियों के माध्यम से। ये है अंतर हम में और भगवान में। तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी शक्तियां होने के बाद भी भगवान इन शक्तियों के अधीन कभी नहीं होते हैं, भगवान इन शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में सदैव रहते हैं। तो माता कुंती महारानी यहां पर कह रही हैं कि ये विरोधाभास जो है हमें लग रहा है, और इसलिए आपकी लीलाएं अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन के बाहर। श्री राजीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर आपको भगवान समझना है कि भगवान क्या चीज है और भगवत तत्व क्या है, तो आपको एक सिद्धांत भली भांति समझ लेना होगा, और वो क्या है कि भगवान अचिंत्य है। अगर आपको भगवान को समझना है तो सबसे पहली बात समझने के लिए यह है कि भगवान को समझ नहीं सकते। अचिंत्य शक्ति है भगवान की। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक पद्धति है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टिकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपको वेदों के पठन से भी नहीं जाना जाता, तपस्या से नहीं जाना जाता, लेकिन जो आपके शुद्ध भक्त हैं वो आपको पहचान सकते हैं। भक्ति के द्वारा आप जाने जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, केवल अपने बुद्धि से तपस्या से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो तो हमेशा असफल रहेंगे। तो भगवान की शक्ति अचिंत्य है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि भगवान नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज है जो कि भगवान नहीं कर सकते, तो फिर वो भगवान नहीं होंगे, और वो एक चीज जो कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है वो भगवान हो जाएगा। इसलिए भगवान शब्द की परिभाषा ही यही है कि भगवान वो हैं जो हर चीज कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। एक बार श्री प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, द इररेजिस्टिबल फोर्स अगेंस्ट द इमूवेबल ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी शक्ति जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, और ऐसे वस्तु जिसको कोई हिला नहीं सकता। अगर दोनों का सामना हो तो क्या होगा? तो क्या भगवान ऐसी शक्ति को, ऐसी कोई वस्तु को बना सकते हैं जिसको वो खुद हिला नहीं सकते? तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। ये है अचिंत्य शक्ति। अचिंत मतलब हमारे चिंतन के, हमारे कल्पना के बाहर। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण अलग अलग योनियों में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई संशय करने वाली बात नहीं है। भगवान अगर मनुष्य योनि में प्रकट होते हैं तो पशु योनि में क्यों नहीं, जलचर योनियों में क्यों नहीं, पक्षी योनियों में क्यों नहीं? आखिर ये सारे योनियां जो हैं, ये तो भगवान के ही, भगवान से ही तो उत्पन्न हुई हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो सारे 84 लाख योनियों के पिता हैं, और इसलिए भगवान हर एक प्राणी से प्रेम करते हैं, हर एक जीव से प्रेम करते हैं, और हर एक जीव का उद्धार चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, न केवल मनुष्यों के उद्धार के लिए, बल्कि हर एक जीव के लिए। इसलिए कभी कभी वो पशु योनि में प्रकट होते हैं, कभी कभी पक्षी योनि, कभी कभी मछलियों के समाज में प्रकट होते हैं, सारे मछलियों का उद्धार कर देते हैं। मनुष्यों को भगवान के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं है। हालांकि भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य देह एक विशेष देह है, अन्य योनियों में साधारणतः भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यहां इस मंदिर में कोई मछलियां बैठी हुई नहीं है उपदेश सुनने के लिए, लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहें तो मछलियों के समाज में जाकर उनको उनकी भाषा में उपदेश देकर उद्धार कर सकते हैं। भगवान के लिए आश्चर्यजनक चीज नहीं है ये। आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? जबकि भगवान कृष्ण पशु समाज में प्रकट हुए, वराह अवतार, एक शुकर रूप भगवान में भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी एक शुकर बन गए। हालांकि शुकर समाज में प्रकट हुए, लेकिन अन्य शुकरों की तरह वो नहीं हैं। जिस प्रकार जब वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य मनुष्यों की तरह हो गए। दिखने में तो वैसे ही लगते हैं, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, नाक हैं, खाते भी उसी तरह हैं, लेकिन ये उनकी लीला है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। हम हर रोज सुबह प्रार्थना करते हैं श्रृंगार दर्शन के समय कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, वो इतना अद्भुत है कि भगवान कोई भी कार्य किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। साधारणतः हम केवल हमारी आंखों से देखते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, हमारे मुख से बोलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने कानों से देख सकते हैं अगर वो चाहे तो, अपने आंखों से सुन सकते हैं चाहे तो, अपने आंखों से खा भी सकते हैं। इसलिए जब हम उनको भोग चढ़ाते हैं तो वो अपने आंखों से मात्र उस भोजन को स्वीकार करते हैं और वो प्रसाद बन जाता है। तो हालांकि भगवान को अपने मुंह से खाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जब वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, क्योंकि हम सब मुंह से खाते हैं, इसलिए भगवान भी वैसे ही खाते हैं। तो जैसे मनुष्य समाज में प्रकट होकर वो ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, उसी तरह है जब वो मछलियों के समाज में प्रकट होते हैं, तब वो रथ के ऊपर बैठ के नहीं जाते, हवाई जहाज में बैठकर नहीं जाते, उस समय पानी में तैरते हैं अन्य मछलियों की तरह। कौन सा अवतार हुआ भगवान का? मत्स्य अवतार। किस लिए प्रकट हुए भगवान इस रूप में? एक बार वेदों का रक्षण करने के लिए और दूसरी बार राजा सत्यव्रत और अन्य ऋषि मुनियों को बचाने के लिए। और जब वो प्रकट हुए तो उनका प्राकट्य मछलियों के समाज में भी अद्भुत था। जब मनुष्य समाज में वो प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से सीधे बाहर आए कंस के जेल में, कारागार में, मथुरा में, तो उस समय वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपनी माता से उन्होंने कहा कि आज तक आपने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा जो चार हाथ लेकर, चार भुजाएं लेकर जन्म लिया हो, जिसके शरीर पे कपड़े हो, आभूषण हो। मैं तो स्वयं भगवान विष्णु हूं और इस रूप में मैं प्रकट हुआ हूं इसीलिए ताकि आप डरे नहीं कंस से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता नहीं करना। और फिर भगवान एक साधारण मनुष्य शिशु की तरह बन गए। तो उसी प्रकार से भगवान अगर किसी भी योनि में प्रकट होते हैं तो वहां भी उनका जन्म जो है, उनका प्राकट्य है, वो अद्भुत होता है। जब मछली समाज में वो प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? जब राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे और एक तालाब में गए, छोटे से तालाब में, तो जब पानी पीने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ जो हथेली चीज पानी में डाला तो अचानक उन्होंने देखा कि यहां एक छोटी सी मछली है। तो उस मछली को फिर से उन्होंने जल में डाल दिया ताकि ये मरे नहीं, और जैसे ही जल में डाल दिया तो मछली बहुत बड़ी हो गई और मछली कहने लगी कि हे राजन, ये जो जल है ये बहुत कम है मेरे लिए, मुझे थोड़ा ज्यादा जल चाहिए, इसलिए ऐसे कोई जगह मुझे डाल दीजिए जहां मैं तैर सकूं। तो राजा सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मछली अचानक बड़ा कैसे हो गया, और ये पहली बार हमने देख रहे हैं हम कि ये बोलने वाला मछली है, आज तक कोई मछली बोलती नहीं है, तो ठीक है ये कोई अद्भुत मछली होगा। तो उठाया और एक बड़े जलाशय में डाला, वहां भी मछली जो है बड़ी हो गई। कहने लगे कि ये राजन, ये भी जगह कम है। फिर आखिर में राजा सत्यव्रत को इस मछली को समुद्र में डालना पड़ा, लेकिन समुद्र भी कम पड़ने लगा। और तब राजा सत्यव्रत सोचने लगा कि ये तो कोई बहुत ही विचित्र बात है, ये तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि हैं। और फिर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तैयारी करो, ठीक 7 दिन में मैं लौट के आऊंगा और तुम सारे ऋषि मुनियों को एकत्र करो और फिर जितने भी जड़ी बूटी वनस्पति आदि हैं उनकी एक एक जो है तुम लेकर आओ यहां। और फिर जब प्रलय होगा तो तुम नौका मेरे दंष्ट्र से बांध देना, और मैं तुम्हें सुरक्षित अवस्था में ले जाऊंगा। और जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही हुआ, भयंकर प्रलय हो गया, पानी बढ़ता गया बढ़ता गया, सब जगह पृथ्वी के ऊपर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता था। राजा सत्यव्रत ने एक आज्ञाकारी भक्त होने के नाते उसी तरह व्यवस्था कर दी थी जैसे कि भगवान ने कहा था, और फिर अपने आप को, ऋषि मुनियों को और तरह तरह के जड़ी बूटी वनस्पतियों को वो बचा पाए। ये कथा जो है बाइबल में भी आती है, जो क्रिश्चियन लोगों का ग्रंथ है बाइबल, उसमें नोआस आर्क कहते हैं। नोआ, वो नाम उस भाषा में दिया गया, आर्क मतलब एक नौका। तो ये केवल 5000 वर्ष वाली पुरानी कथा नहीं है, ये कथा उनको कहां से, उन्होंने कहां से सुना? पहले तो ये सारी वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक संस्कृति सारे विश्व भर में फैली हुई थी। फिर जैसे जैसे लोग इधर उधर अलग अलग जगह बस गए, वो संस्कृत भाषा भूल गए, अपनी आदि संस्कृति को भूल गए, उनके नाम बदल गए, भाषा बदल गए, लेकिन वो कहानियां चलती रहीं। इसलिए नोआज आर तो क्या केवल राजा सत्यव्रत की कहानी है, लेवन मूल जो कथा है उनको अब याद नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से भगवान जब मछलियों के समाज में, जलचरों के समाज में, याद सु इसमें प्रकट हुए, तो बड़ा अद्भुत उनका प्राकट्य था। और ऐसे भगवान लंबे समय तक प्रलय के जल में घूमते फिरते रहे, तैरते रहे, और राजा सत्यव्रत आगे चल के अपने अगले जन्म में वो मनु बन गए। तो इस कल्प के जो मनु हैं, वैवस्वत मनु, विवस्वान के पुत्र, वो पिछले जन्म में राजा सत्यव्रत थे। और इस प्रकार से हर एक योनि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो पशु समाज में भी जब वराहदेव का अवतार उन्होंने लिया, उस समय भी एक शूकर का रूप लिया। शूकर वैसे साधारणतः बहुत एक गंदा पशु होता है, हमेशा कीचड़ में रहता है, ऐसे गंदी चीजों को खाता है। तो भगवान को चाहिए था कि पृथ्वी को, जो कि गर्भोदक सागर के नीचे गिरा हुआ है, उसको बचाएं। जब ऐसे कोई नीचे स्थान में जाना पड़ता है, तो भगवान को ऐसे उपयुक्त योनि स्वीकार करते हैं जैसे वराह या शूकर का रूप, और उन्होंने पृथ्वी को उठाया अपने दंष्ट्रों के ऊपर और सही अपनी कक्षा में स्थित कर दिया। और अन्य योनियों में भी हम देखते हैं कभी कभी भगवान ऋषि बन जाते हैं। ऋषियों का उदाहरण कोई, कपिल, कपिल मुनि, कपिल देव, ये एक ऋषि हुए, ब्राह्मण हुए। परशुराम, ये भी एक शक्तिवेश अवतार माने जाते हैं। और कौन, नारायण ऋषि, जो कि बद्री का आश्रम में तपस्या करते हैं। और कभी कभी आधे नर और आधे पशु का शरीर स्वीकार करते हैं। कोई उदाहरण, नरसिंह देव, नर सिंह, आधा नर और आधा सिंह का स्वरूप। और कोई ऐसे आधा नर आधा पशु का उदाहरण, हयग्रीव। हयग्रीव मतलब क्या है, घोड़े का, घोड़े की गर्दन। हय मतलब अश्व, घोड़ा, ग्रीव मतलब गर्दन। जैसे रावण का पहले नाम था दशग्रीव, दस सर थे, दस गर्दन थे उसके, उसी प्रकार से हयग्रीव। हयग्रीव अवतार भगवान ने क्यों लिया? वैसे शरीर मनुष्य का था लेकिन गर्दन अश्व का था। क्यों लिया भगवान ने हयग्रीव अवतार? वेदों की रक्षा करने के लिए। जब ब्रह्मा जी एक बार उनको थोड़ी सी नींद आ गई, तो एक असुर ने वो वेद चुरा लिए। फिर हयग्रीव भगवान ने अवतार लिया और वेदों की रक्षा की, वेदों को पुनः बचा दिया। इस प्रकार से भगवान ने अनगिनत अवतार लिए हैं, कभी मनुष्य समाज में, कभी ऋषियों के समाज में, हालांकि ऋषि भी मनुष्य होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऋषि जो है वो देवलोक में या महरलोक, जनलोक में भी जन्म लेते हैं, कभी कभी मछलियों के योनि में भी लेते हैं। तो भगवान के लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये है अचिंत्य। और भगवान अपने लीला को ऐसे सुंदर ढंग से करते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मछली नहीं है, ये पशु नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, कभी कभी भगवान ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाते हैं जैसे कि सभी को पता चले कि ठीक है, ये तो मेरी लीला है, मेरा नाटक है, लेकिन मैं हूं भगवान। इसी तरह से मछली योनि में आकर भी इतने बड़े हो गए। आगे कुंती महारानी यहां पर कहती हैं, विश्वात्मन, कि आप विश्व के आत्मा हैं। शरीर के अंदर अगर आत्मा न हो तो क्या होगा शरीर का? शरीर टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार से इस शरीर को टिकने के लिए प्राण चाहिए, प्राण को आत्मा चाहिए, ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए भगवान परमात्मा बन के हैं। भगवान इस ब्रह्मांड के प्राण हैं, इस ब्रह्मांड के आत्मा हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर अपने आप को पुनः विस्तारित करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो भगवान हर चीज के प्राण हैं। अगर वहां जीव तत्व आध्यात्मिक शक्ति न हो तो भौतिक शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी अपने आप। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो यहां पर कुंती महारानी कहते हैं कि क्योंकि आप इस तरह से अचिंत्य शक्ति वाले हैं और लोग आपके अचिंत्य शक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए ये बात तद अत्यंत विडंबनम, सबको विडंबना में डालने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन कितने महान हैं ये लोग नहीं जानते। जब हम महान शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में कैसे एक दृश्य आता है, जैसे हिमालय को देखते हैं, बहुत विराट है हिमालय, महान, हम कहते हैं कितना महान है ये। या किसी विराट सागर को देखते हैं तो हमारे मन में ये शब्द आता है, महान, बहुत विशाल, बड़ा है ये सागर। या बहुत बड़ा ऊंचा वृक्ष देखते हैं तो कहते हैं महान। तो इस प्रकार से कोई महान चीज को देखने से, बड़े विराट चीज को देखने से हमें लगता है कि ये वस्तु महान है। तो भगवान तो महान है, लेकिन लोगों की कल्पना ऐसे सीमित है, इसलिए श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में सारे ब्रह्मांड की कल्पना इस तरह से की है कि मानो ये भी भगवान का एक विराट रूप है, भगवान का एक विशाल शरीर है, जिसमें जो पहाड़ होते हैं वो भगवान के हड्डियों के समान हैं, जो सूरज और चांद हैं वो भगवान के आंखों के समान है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भगवान के रोम के समान हैं। तो ये कल्पना या ये चित्र इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में, ताकि जो लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं जानते, उसमें विश्वास नहीं करते, उनकी श्रद्धा नहीं है, वो कम से कम भगवान की महानता को, जो कि इस भौतिक जगत के भीतर जड़ पदार्थों से बना हुआ है, उसको पहचान लें। कम से कम कुछ तो भगवान की शक्ति को स्वीकार करें नास्तिक बनने के बजाय। तो इस प्रकार से विराट रूप एक ऐसी कल्पना है भगवान की, जो कि इस भौतिक जगत के भीतर है। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह काल्पनिक है। कभी कभी हम बादलों को देखते हैं और लगता है कि अरे ये तो मेरे मित्र का चेहरा उस बादल में है, वो बादल का आकार ऐसे हो जाता है कि कैसे लगता है ये तो ऐसे है। कभी कभी हम चांद को देखते हैं तो चांद के ऊपर जो काले धब्बे हैं, ऐसे लगता है कि ये कोई आदमी है, हंस रहा है, इसका नाक है, एक धब्बा उसका नाक है, दो धब्बे उसकी आंखें हैं। चांद है ये सत्य है, बादल है ये सत्य है, परंतु चांद में बादल में किसी अलग आकार को देखना ये सत्य नहीं है, ये कल्पना है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड है, ये एक सत्य है, परंतु ब्रह्मांड के जो अंदर जो पहाड़ हैं वो भगवान के हड्डियां हैं, ये काल्पनिक है। लेकिन फिर भी ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है, ताकि कम से कम हम कुछ तो भगवान से संबंधित देख रहे हैं। ये भी कृष्ण भावना की शुरुआत है। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझे, जब भी वो पहाड़ को देखे तो वो सोचेगा ये भगवान की हड्डी है, जब वो नदियों को देखे सोचेगा ये भगवान के नस हैं, कोई वृक्ष को देखे अरे ये भगवान के रोम हैं। इस तरह से कृष्ण 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 भगवान 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 कहते कहते उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो हर चीज भगवान से संबंधित देख रहा है। और यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये समझना कि हर चीज भगवान की शक्ति है, भगवान से कोई भी वस्तु भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और जब हम हर वस्तु को भगवान से जुड़ा हुआ देखते हैं तो हमारी दृष्टि परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन ये संबंध देखने का मतलब है कि हमें हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। ज्ञान तो प्रेम की शुरुआत मात्र है, ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, इस ज्ञान को प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए, जैसे कि यशोदा माता के लिए हुआ। यशोदा माता को इतना प्रेम हो गया था श्री कृष्ण से कि उस प्रेम की वजह से वो अपने बच्चे को पहचान नहीं सकी, मतलब ये जान नहीं सकी कि मेरा बच्चा भगवान है। कभी कभी ये देखा जाता है इस भौतिक जगत में भी, अगर कोई राजा है या कोई प्रधानमंत्री है या कुछ है, उस व्यक्ति की मां तो उसको बच्चा ही समझती है, वो ये नहीं सोचती है कि ये तो मेरा बेटा है, बहुत प्रिय प्रधानमंत्री है, नहीं, वो अभी भी उसको बोली गया, अरे बेटा संभालना, रास्ता पार करते समय बाएं देखना फिर दाएं देखना, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। इसको स्नेह कहते हैं, प्रेम। तो माता यशोदा का स्नेह इतना तीव्र था कि वो पहचान नहीं पाई कि मेरा बच्चा जो है वो भगवान है। अगर पहचानती तो उनका वात्सल्य भाव जो है उसमें विकार आ जाता, वो आनंद न यशोदा माता को आता और न कृष्ण भगवान को आता। तो इस प्रकार से जो महानता की कल्पना है, इसको करने से हम धीरे धीरे उस प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान की महानता केवल किसी विशाल वस्तु में नहीं है, जो वास्तव में महान है वो न केवल विराट है लेकिन छोटे से छोटे भी हैं। उपनिषदों में कहा गया है अणोर अणियान महतो महियान, भगवान छोटे से छोटे वस्तु के समान भी हैं और बड़े से बड़े भी वस्तु हैं। जिस प्रकार से ये विराट वस्तु भी हमें भगवान का याद दिलाती हैं, उसी तरह छोटे से छोटे वस्तु वो भी हमें भगवान का याद दिलाने चाहिए। आजकल मनुष्य समाज को थोड़ा गर्व हो गया है कि हम इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाते हैं, जंबो जेट, और इतने बड़े हवाई जहाज आकाशमान में चलते हैं तो कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना ये बड़ा यंत्र, मनुष्य समाज इतना आगे बढ़ गया है कि इतना बड़ा यंत्र हवा में उड़ा रहा है। वास्तव में एक तरह का चमत्कार है। परंतु क्या मनुष्य समाज एक मच्छर जितना बड़ा हवाई जहाज बना सकते हैं? मनुष्य समाज को अपने तकनीकी ज्ञान का बहुत गर्व है, लेकिन इतना छोटा हवाई जहाज जो कि मच्छर या मक्खी के समान है, और इसके लिए कोई एरोड्रोम एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जंबो जेट के लिए कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने लोगों को इसके पीछे तकनीकी जो हर सामान को ठीक ठाक करना, उसके इंजन को बराबर रखना, वो पायलट को बेचारे कितने सालों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और फिर एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डे जो है, उनको अमुक तरह से बनाया जाना पड़ता है। यहां तो बेलगाम हवाई अड्डे में जंबो जेट नहीं आ सकता, ये हवाई अड्डा इतना बड़ा नहीं है कि जंबो जेट यहां पे आ सके, यहां तो छोटे छोटे हवाई जहाज आ सकते हैं। तो हमें हमारे बड़े बड़े हवाई जहाजों का, रॉकेटों का गर्व है, लेकिन भगवान ने बनाए हुए एरोप्लेन देखिए, बड़े से बड़े एरोप्लेन और छोटे से छोटे एरोप्लेन। बड़े से बड़े एरोप्लेन क्या है? ये सारे ग्रह, ये लोक, ये पृथ्वी लोक भी तो अपने कक्षा में चल रही है और कोई टक्कर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई क्रैश नहीं। इतने बड़े विमान देखिए अंतरिक्ष में चल रहे हैं, ये सारे ग्रह अपने अपने पथ में, सब चलते हैं, भगवान कैसे उड़ा रहे हैं इनको। और साथ साथ भगवान ने इतने छोटे छोटे हवाई जहाज बनाए हैं, जैसे मक्खी हैं, मच्छर हैं, और उनसे भी छोटे, और उनको उड़ने के लिए कोई रनवे नहीं। हवाई जहाज जो होते हैं उनको बहुत जमीन पर चलना पड़ता है, फिर आगे चल के उड़ते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे भगवान ने बनाए हुए हवाई जहाज तुरंत उधर से उड़ सकते हैं, तुरंत लैंडिंग, सीधे ऊपर सीधे नीचे। ऐसा नहीं कि उनको बहुत भागना पड़ता है फिर भाग भाग पे उड़ते हैं, ऐसा नहीं। बाएं दाएं ऊपर नीचे गोल गोल जैसा चाहे घूम सकते हैं। हम सबको अनुभव है, प्रवचन सुनते सुनते भी ये मच्छर आके ऊ ऊ गोल घूमते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चमत्कार, ये है महानता। और ऐसे छोटे छोटे मच्छर और छोटे छोटे कीड़े जो कि अणु के बराबर हैं, छोटे छोटे हैं, उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो सोचिए, भगवान बड़े से बड़े तो हैं ही, लेकिन छोटे से छोटे भी हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, महानता एक तरफ ही नहीं होता। ग्रेटनेस इज नॉट वन साइडेड, प्रभुपाद कहते कि महान केवल वो व्यक्ति नहीं है जो बड़ा से बड़ा है, उसको छोटा से छोटा भी एक ही साथ होना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी महानता भी अचिंत्य है। ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। और वही श्री कृष्ण जिनकी शक्ति अचिंत्य है, जब वृंदावन में आए तो कोई उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि वृंदावन के निवासियों का प्रेम इतना तीव्र था। लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की पहचान कराते हैं। इत्थाम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं विजहरो कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तरह तरह के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि ये जो बालक है एक साधारण बच्चा है, नरदारकेण, लेकिन ये लोग माया के चंगुल में हैं, मायाश्रितानाम, माया के आश्रित हैं, इसलिए श्री कृष्ण को एक साधारण बच्चा या बालक समझते हैं। जो लोग ऐश्वर्य भाव में उनकी स्तुति करते हैं, हे भगवान, वो भगवान श्री हरि को परदैवतेन, उनको अपना स्वामी और अपना प्रभु समझते हैं। और ऐसे निराकारवादी हैं, ज्ञानी हैं, जो हमेशा ज्ञान में, ज्ञान के मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान करते हैं निराकार स्वरूप के ऊपर और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण ये जो यहां वृंदावन में लीला कर रहा है, ये तो उस निराकार ब्रह्म का भी उद्गम है, उगम स्थान है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये निराकार ब्रह्म ज्योति है जिसके प्रति ये सारे ज्ञानी सब आकर्षित होते हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज मात्र है। तो ये ज्ञानी लोग केवल प्रकाश से प्रकाश तक उनकी पहुंच होती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, इस प्रकाश को पार करके उस प्रकाश का स्रोत जो है उस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में कहा गया है, हिरणमयीन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्तम पूषम पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे भगवान, ये आपका निराकार जो तेज है, इतना इसका चमक है, इतनी रोशनी है कि इसकी वजह से मैं आपके सुंदर मुखारविंद को नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं इस निराकार ज्योति से परे होना चाहता हूं। इसलिए पर्दा जो है, निराकार ब्रह्म का पर्दा है, इसको हटाइए और अपने सुंदर मुख का दर्शन करवाइए। जो तो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, केवल कोई निराकार शक्ति नहीं होते। और इसलिए वो सीधे व्यक्ति तक पहुंचते हैं भक्ति के माध्यम से। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, तो ऐसे जो सताम ऋषि मुनि होते हैं जो ज्ञान योग का पथ अपनाते हैं वो केवल ब्रह्म सुख में आनंद लेना चाहते हैं, परंतु ये जो बालक हैं जो कि भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, देखिए वहां एक चित्र है आप देखते हैं पीछे उस नोटिस बोर्ड के उस तरफ, वहां पे आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण कई अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं जैसे कि मानो छोटे स्कूल के बच्चे जाकर कहीं पिकनिक कर रहे हों और सब बड़े मजे से खा रहे हैं। तो इन बच्चों ने कभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा, बल्कि अगर ऐसे कोई कह दिया होता तो उसका मजाक उड़ाता। तो इन बच्चों के बारे में इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये कितने भाग्यशाली हैं, साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, कई जन्मों से उन्होंने बहुत तपस्या की है, भगवान की भक्ति की है, इसलिए उनको इस जन्म में साक्षात भगवान के साथ इतनी निकटता में लीला करने का अवसर मिला है, इतने तीव्र प्रेम से कि वो ये भी नहीं जान सकते हैं अपने प्रेम के द्वारा कि ये बच्चा जो हमारा मित्र है वो वास्तव में भगवान है। तो हालांकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, विश्व के आत्मा हैं, अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं, तरह तरह के योनियों में प्रकट होते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों के बीच में बैठकर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, एक कप भोजन चोरी करके अपने मुंह में डालते हैं। जब वो बैठे हुए थे और एक बच्चा जो है वो अपने माता ने बनाया हुआ छाछ पी रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उसके फूले हुए गालों को दो उंगली डालकर उसके मुख से सारा छाछ निकलवा दिया और सब लोग हंसने लगे। और फिर वो बच्चे दूसरे बच्चे ने एक किसी का टिफिन चुरा लिया और कृष्ण को दे दिया, कृष्ण भी छुपा लिया अपने पीठ के पीछे। तो अगर किसी और को बोले ये भगवान है, सोचे भगवान कभी ऐसे करता है, ये कोई भगवान का काम है क्या? लोग सोचेंगे भगवान का काम क्या होता है, अरे सृष्टि की रचना करना, कुछ सुनामी भेजना, कर किसी को तकलीफ में है तो उसको बचाना, यानी किसी को धन चाहिए कुछ चाहिए तो उसकी इच्छा पूर्ण करना, ये भगवान का काम होता है थोड़ी ऐसे बच्चों के बीच में बैठ के शरारत करना, मस्ती करना, मजाक करना। लेकिन ये है असली भगवान, ऐसे करना भगवान पसंद करते हैं। इसलिए तो कुंती महारानी कहती है तद अत्यंत विडंबनम, ये सब विडंबना की बात है। अरे जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं तो हम साधारण व्यक्तियों की बात तो क्या है। ब्रह्मा जी ने जब यही दृश्य देखा जो कि आप उस चित्र में देख रहे हैं, देखिए ब्रह्मा जी भी हैं अपने हंस वाहन के ऊपर आसमान से देख रहे हैं, ये हरि है, ये भगवान है। ब्रह्मा जी को मन में विस्मय हुआ, ये तो भगवान नहीं हो सकता, मंदिरों में तो हम भगवान को 56 भोग चढ़ाते हैं, बड़ा शानदार भोजन लेते हैं मंदिरों में भगवान, और यहां भगवान क्या कर रहे हैं, एक मुट्ठी में दही है, दही के अंदर थोड़े फल के टुकड़े हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं भगवान। अरे सभ्यता भी नहीं है, बाएं हाथ से खा रहे हैं, केवल दाहिने हाथ से खाना चाहिए, कैसे भगवान हो सकते हैं। और वो भी थोड़े, एक मुट्ठी में ये है, दूसरे मुट्ठी में कुछ और है, कभी ये मुंह में डाल रहे हैं, कभी वो मुंह में डाल रहे हैं, दूसरे की कुछ चुरा रहे हैं, एक का झूठा दूसरा खा रहा है, दूसरे का झूठा तीसरा खा रहा है, ये सब चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, हरि ही यदि स्यात्, अगर ये वास्तव में हरि है तो कुत्सित अन्न, ये जो निम्न श्रेणी का अन्न है, ये भला क्यों खा रहा है, उसको कुछ खाना चाहिए, अच्छा भोजन, शानदार कुछ बादाम किशमिश काजू से बना हुआ कुछ, ऐसे बढ़िया कुछ खाना चाहिए। बड़े देव भी मोहित हो जाते हैं। तो यहां हमारे बेलगाम में अगर कोई कुछ बोले कृष्ण के बारे में, अरे कृष्ण तो ऐसे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषीम तरुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, जो अज्ञानी लोग हैं वो इसी प्रकार से सोचते हैं, भगवान को जानते नहीं है इसलिए भगवान की निंदा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर आते हैं अलग अलग योनियों में, और उनकी योजना क्या है, हम सबका उद्धार करना। वो चाहते हैं कि हम सब उनके धाम में लौट कर आए। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम यहां पर इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके पड़े। भगवान निमंत्रण देते हैं, अवतार लेकर हम सबको वापस ले जाने के लिए आते हैं। ये उनकी करुणा है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी इस बात को पुनः याद कर रही है। दूसरे श्लोक में भी कुंती महारानी कह रही है विडंबना, पिछले श्लोक में भी कह रही थी विडंबना की, सब विडंबना की बात है। और कल जो सुबह हम चर्चा करेंगे श्लोक सुबह 8 बजे, उसमें तीसरी बार कुंती महारानी इसी विचार को व्यक्त करेंगी, लेकिन और एक संदर्भ में। तो अगर आपको जानना है कि किस बात से कुंती महारानी और भ्रमित हो रही हैं, तो आपको कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, या तो आपको श्रीमद् भागवत खोल के 31वां श्लोक इस 8वें अध्याय का पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। हाँ, तो एक्चुअली हम जब 8 offenses सॉरी जब अपराध पढ़ते हैं, हम 10 नाम अपराध, तो 8वां offense ऐसा है कि जो भक्ति को समझना या भगवान के नाम को समझना, पायस एक्टिविटी, ये भी एक अपराध है। तो अगर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कृत पुण्य पुंजा, तो इसको कैसे समझा जाए?
प्रश्न का स्पष्टीकरण कर देता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि वैसे भक्ति के कार्यों को एक साधारण भौतिक पुण्य समझना, ये एक अपराध है। साधारण पुण्य कैसे हैं? जैसे कि पेड़ वृक्षारोपण करना, अंधों की मदद करना, बीमार लोगों को दवाई देना, ये सब साधारण पुण्य है जिससे कि भौतिक फल प्राप्त होता है। परंतु भक्ति एक निराली वस्तु है। भक्ति का संबंध इन पुण्य कार्यों से नहीं होता है। तो प्रश्न ये है कि जिस श्लोक का उच्चारण अब किया गया, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो बालक हैं, कई जन्मों तक उन्होंने पुण्य किए थे, कृत पुण्य पुंजा, पुण्यों की पूंजी उनके पास थी। तो उनका प्रश्न कृष्ण बलराम प्रभु का ये है कि पुण्य को एकत्र करके भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो उसका इसका उत्तर ये है कि ये पुण्य जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो साधारण भौतिक पुण्य नहीं है। अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं। जो साधारण भौतिक पुण्य है उसको कर्मोन्मुखी सुकृति कहते हैं। जिस पुण्य से हमें भौतिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे भी एक पुण्य है जिसको भक्तोन्मुखी सुकृति कहते हैं। ऐसी सुकृति, कृति मतलब कार्य, सु मतलब बहुत अच्छा। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति, जिस सुकृति को करने से भक्ति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करना भक्तों के संग में, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना, कृष्ण प्रसाद का सेवन करना, उनके सुंदर विग्रह का दर्शन करना, मंदिर का मार्जन करना, ये सब भक्तोन्मुखी सुकृति है। तो इन ग्वाल बालों ने कई जन्मों से ऐसे भक्तोन्मुखी सुकृति एकत्र किया था, किसकी पूंजी बढ़ाई थी, बहुत तपस्या की थी उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए। और इस समय जब उनको शुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उनको वृंदावन में जन्म दिया, उन्हीं के निज जन बनाया, अपने मित्र बना लिए, क्योंकि उनकी मन में पूर्व जन्मों से अभिलाषा थी कि मैं कृष्ण को एक मित्र के रूप से प्रेम करना चाहता हूं। और एक प्रश्न है, अगर भगवान का रूप मंदिर में स्थित मूर्ति या विग्रह के बिल्कुल समान है, तो फिर वो अचिंत्य क्यों है? वो अचिंत इसलिए हैं कि यहाँ मंदिर में होते हुए भी सब जगह है, ये अचिंत है ना। हम इधर हैं तो हम वहां नहीं हो सकते, हम वहां हैं तो यहां नहीं हो सकते, तो भगवान यहां पर होते हुए भी सब जगह है। भगवान इतने छोटे होते हुए भी बहुत बड़े हैं। भगवान की मूर्ति कि जब ऊंचाई की बात हम करते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं करते, हम हाथों को ऐसा नहीं पकड़ते कि भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी है, हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा। क्यों? क्यों? इसका मतलब है कि वास्तव में ये बहुत ऊपर नीचे और उनका साइज है और बहुत बड़े हैं, केवल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए इतना छोटा सा साइज उन्होंने लिया हुआ है। ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है आप उनको सीमित कर रहे हैं कि इतने ही हैं। ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे दृष्टि में इतने हैं लेकिन वैसे भगवान बहुत बड़े हैं। और भगवान ने एक भौतिक जड़ पदार्थों के माध्यम से यहां अपना प्राकट्य कराया हम सबके लिए, लेकिन फिर भी वो जड़ पदार्थ नहीं है। वो जो भगवान का अर्चा विग्रह है, जो मूर्ति है, वो सच्चिदानंद है। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? हमें लगेगा अरे ये तो धातु का लग रहा है, आप तो बोल रहे हैं ये तो आध्यात्मिक है, ये है अचिंत्य। इसलिए भगवान को अचिंत्य कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शन होंगे, दर्शन के साथ साथ कीर्तन, लेकिन इसके बाद जाइएगा मत, क्योंकि हमारे मंदिर के बच्चे एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं पीछे, और उसके बाद भी जाइए मत, क्योंकि प्रसाद है उसके बाद, तो प्रसाद का सेवन करके ही आप सब जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopala Nanda Radha Gopala Nanda Radhe Jai Gaurani Tai Gaurani Tai Gaurani Tai Jai Gaurani Tai Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Gaur Premanande.